ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ। ਬਾਅਦ ਬਾਇਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਏਲਚੀ। ਕੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ?
ਏਲਚੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ?
ਏਲਚੀ।
ਏਲਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਇਲਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਬਸ਼ਾਰਤ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੁੱਕੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੁਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੱਭਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਚੰਨਿਆਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਮੋਸ਼ੀ 'ਚ ਚੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਸੋਚ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੂਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਚੰਗਾ ਮੇਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਾਰੀਫ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਮਦ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸਤਾਇਸ਼ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇ ਲੀਏ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਤਮਾਮ ਕਲੀਸਿਆ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਖੁਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੁਬਹ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿ ਤੂਨੇ ਯੇ ਮੁਮਕਿਨ ਕੀਆ ਕਿ ਹਮ ਸਭ ਮਿਲ ਕਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰੇ, ਹਮ ਸਭ ਮਿਲ ਕਰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਲਾਮ ਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ ਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਪੈਤਾਲ ਤੇਰੇ ਆਗੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਲਮੇ ਰਵਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇਰੇ ਆਗੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੁਝੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਹਾਂ ਰਹਾ, ਤੂਨੇ ਮੌਤ ਪਰ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਕਲਾਮ ਕੇ ਵਸੀਲਾ ਸੇ ਹਮ ਸਭ ਕੋ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਔਰ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਵਾਹਦ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਅਮਰ ਦਰਜਾ ਪਾਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇਂ ਯੇ ਦੁਆ ਮਾਂਗਤੇ ਹੈਂ, ਆਮੇਨ। ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਹਮ ਕੌਨ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਂ ਸੇ ਸੀਖ ਰਹੇ ਹੈਂ।
ਇਫਸੀਓਂ,
ਇਫਸੀਓਂ ਬਲਫਤ ਮੇਂ ਸੇ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਕੌਨ ਸੀ ਆਇਤ? 18ਵੀਂ ਆਇਤ। ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ
18 ਆਇਤ।
ਜੋ ਬਹਿਨ ਭਾਈ ਬਾਇਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਕੇ ਬਾਇਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਬਾਇਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਹਮ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈ ਇਫਸੀਓਂ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਉਸਕੀ 18ਵੀਂ ਆਇਤ ਮੇਂ ਸੇ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਹਮਨੇ ਸੀਖਾ ਥਾ ਖੁਦਾ ਕਾ ਬੁਲਾਵਾ ਔਰ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਸਿਖਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣੇ ਪਰ ਯੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕਾ ਅਗਰ ਵੋ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਹੈ ਯਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇਸ ਆਇਤ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਹਮ ਇਸ ਆਇਤ ਮੇਂ ਸੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਬਾਤੇਂ ਸੀਖੇਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਹਮ ਇਸ ਖਤ ਮੇਂ ਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਇਤ ਬਾ ਆਇਤ ਸੀਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਬਰਕਤ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਈਮਾਨ ਮੇਂ ਇਤਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਂ, ਇਤਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਂ ਕਿ ਜਬ ਜੈਸੇ ਮੁਲਕੇ ਮਿਸਰ ਮੇਂ ਜਬ ਖੁਦਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਰਾਤ ਕੋ ਮੌਤ ਕਾ ਮੌਤ ਕੀ ਵਬਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਘਰ ਪਰ ਬਰਰੇ ਕਾ ਲਹੂ ਲਗਾ ਹੋਗਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਪਰ ਬਰਰੇ ਕੇ ਲਹੂ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਗੇ, ਵੋ ਘਰ ਕਾ ਅਕਲੋਤਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਵੋ ਮੌਤ ਕੀ ਵਬਾ ਸੇ ਬਚੇਗਾ। ਔਰ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਮੂਸਾ ਕੀ ਬਾਤ ਕਾ ਯਕੀਨ ਕੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਸੇ ਪੈਗਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਹਮਾਰੇ ਮੁਲਕ ਮੇਂ ਡੈਂਗੀ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਈਮਾਨ ਮੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਹਮੇਂ ਬਚਾਨੇ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਹਮੇਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ। खुदा के कलाम का पढ़ने का, सुनने का, उसे समझने का यही मतलब है। आपको याद होगा पालूस रसूल ने क्या कहा था, ईमान सुनने से और सुनना मसीह के
कलाम से।
मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज आए, आपकी आवाज आपके मुंह से निकले, क्योंकि जब कलाम बोला जाता है तो वो जिंदगियों में काम करता है। जब कलाम का हम इजहार करते हैं वो कलाम जिंदा कलाम बनता है, क्योंकि कलाम जो बाइबल मुकद्दस लिखा गया है ये तब ही जिंदा होगा जब हम इस पर यकीन करेंगे। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो खुदा पर ईमान नहीं रखते, और उनका ईमान तब तक जिंदा नहीं होगा जब तक वो यकीन ना करें या नहीं करते। इसी तरह बाइबल मुकद्दस के वादे भी आपके लिए जिंदा होंगे जब आप उस पर यकीन करेंगे। सो इफिसियों पहला बाब उसकी 18वीं आयत, और तुम्हारे दिल की आंखें
रोशन हो
हो जाए
जाए
ताकि तुमको
मालूम हो
कि उसके बुलाने से कैसी कुछ
उम्मीद है।
और उम्मीद है और उसकी मेराज के जलाल की दौलत मुकद्दसों में
कैसी
कैसी
कुछ
कुछ
है।
है। इस आयत में से हम सीखेंगे लफ्ज बुलावे। बुलावे का मतलब बुलाया जाना, किसी को पुकारना, किसी को आवाज देना। आप जब भी अपने बेटे को बेटी को घर में पुकारते हैं, किस गर्ज से पुकारते हैं? काशी इधर आना, जी अम्मी जी। काशी इधर आना, जी अम्मी जी, मेरे लिए दूध लेकर आना वहां से, मेरे लिए भाई ताहर की दुकान से फलां चीज लेकर आना। जब किसी को कोई बुलाता है तो उसे किसी काम के लिए बुलाता है, ऐसा ही है कि नहीं?
जी
जैसे जैसे मैंने काशी को वासमारी बोल कर खड़ा हो गया। लेकिन क्या हुआ, इसमें से हम सीख सकते हैं, उसने अपना नाम सुना और उसी वक्त वो खड़ा हो
खड़ा हो
गया।
गया।
हमें भी ईमान में इसी तरह जब खुदा हमें पुकारे हमें कहने की जरूरत है, मैं हाजिर हूं खुदावंद, मैं हाजिर हूं, खुदा तेरी बंदी, खुदा तेरा बंदा हाजिर हूं। इसकी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। जब खुदावंद का बंदा सैमुअल पैदा हुआ, हन्ना का बेटा, तो जब वो एली काहिन की खिदमत कर रहा था तो खुदा ने उसे पुकारा, तो वो आधी रात में उठ खड़ा हुआ और एली काहिन के पास जाके कहता है कि क्या तूने मुझे आवाज दी? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं आवाज दी। दूसरी बार ऐसा हुआ, तीसरी बार एली काहिन ने कहा जरूर ये खुदावंद तुझसे बात करना चाहता है कोई, और उसने कहा कि जब दोबारा तू ये आवाज सुने के सैमुअल सैमुअल, तो कहना खुदावंद मैं हाजिर हूं। यही बात काशी ने की, जब मैंने कहा काशी इधर आओ, काशी उसी वक्त खड़ा हो गया। इसी का मतलब है बुलावा, बुलाया जाना, लेकिन ये तब ही हकीकत होता है जब उसका जवाब देते हैं। आपको याद होगा मुकद्दसा मरियम, फरिश्ता नाजिल हुआ, फरिश्ता ने कहा कि ऐ मरियम तुझ पर ये अजीम फजल हुआ है, खुदा की तरफ से तुझ पर रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ है, तू खुदा की तरफ से चुनी गई है, तू खुदा की तरफ से बुलाई गई है। किस लिए? कि तू खुदा के उस मकसद को पूरा करे जो खुदा सालों हजारों हजारों साल से अपने लिए उसने तैयार किया है, कि बनी नौ इंसान को उनके गुनाहों से कफारा के लिए मुनजी ले। आप सब भी बुलाए गए हैं, जैसे मैंने अपनी बुलाहट का जवाब दिया। अमेरिका में बहुत खुशहाल जिंदगी है, मैं चाहूं तो वहां पर दिन रात मेहनत करके आपको अपना वक्त नहीं दे सकता, जितने मर्जी चाहूं पैसे बना सकता हूं, जितना मर्जी चाहूं अमीर हो सकता हूं, लेकिन मेरी ये बुलाहट नहीं कि मैं सिर्फ दुनिया की तरीकी में दौलत में शोहरत में खो जाऊं। मेरा बुलावा क्या है? आप जैसे लोगों तक, उन लोगों तक जिन्होंने पहले यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना, उन तक उस बुलावे के बारे में बात की जाए। जहाज में एक दोस्त था, वो हिंदुस्तान से था, उससे मेरी बात होना शुरू होगी। वो डॉक्टर था, और मैंने उससे पूछा कि आप कौन है। उसने बताया कि मैं डॉक्टर हूँ, जिस्म के हिस्सों के बारे में मैं क्या करता हूँ, तहकीक करता हूँ। तहकीक से मुराद यानी कि उसके बारे में इलम रखता हूँ, जानता हूँ, जांच करता हूँ, पड़ताल करता हूँ, तलाश करता हूँ कि बीमारी कहाँ पर है। तो मैंने उससे बात की तो मैं उसके साथ यीशु मसीह के बारे में बात करने लगा कि खुदा ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा है कि जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, चाहे वो गुलाम है, आजाद है, हिंदू है, सिख है, किसी भी फिरके से, चाहे वो मुस्लिम है। खुदा की ये ख्वाहिश है, खुदा की ये दुआ है, खुदा की ये क्या है, खुदा का ये पैगाम और ख्वाहिश है। बुलावे, आपके लिए बुलावा है। वो बुलावा क्या है? खुदा के लोग होने का। खुदा के लोगों का काम क्या है? खुदा की खिदमत करना। इसीलिए हम यहाँ पर हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि आपकी खिदमत की जाए। खिदमत से हरगिज़ मुराद नहीं कि मैं बहनों के लिए भांडे धोने शुरू कर दूंगा, नहीं। खिदमत से हरगिज़ ये मुराद नहीं कि मैं किसी के नौकरी पर जाके उसके लिए नौकरी करना शुरू कर दूंगा। मेरा कहने का मतलब है खिदमत के लिए आपको तामीर करने के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी रूहानी रहनुमाई के लिए, नौजवानों की राही रहनुमाई के लिए यहाँ पर खुदा ने मुझे खिदमत के लिए फिर भेजा है। तो जितना इसमें मेरा हिस्सा शामिल है हाँ करने के साथ, उतना ही हिस्सा आपका शामिल है। क्योंकि जब आप हर सुबह उठते हैं आपके जहन में पहली सोच होती है, 1 घंटा और सो लूं, 1 घंटा और सो लूं, मुझे ये काम करना है, मुझे भाई के लिए चाय बनानी है, मुझे अपने अबू के लिए ये काम करना है, मुझे कपड़े इस्त्री करने हैं, मुझे ये करना है, वो करना है, ये सब काम आपके जहन में आते होंगे, आते हैं ना किसी तरह। मेरे जहन में आज सुबह तकरीबन मैं 3 बजे उठ खड़ा हुआ, तो 3 बजे मैंने कहा खुदा तेरी मर्जी क्या है, किस लिए मैं 3 बजे उठ खड़ा हूँ? इसलिए कि दुआ की जाए। तो 3 बजे से अब तक मेरे जहन में आपके लिए दुआ चल रही है, इस कलीसिया के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, खादमों के लिए, इस स्कूल के लिए, दूसरे बच्चों के स्कूल के लिए, पुरानी क्रिश्चियन कॉलोनी के लिए, 57 चक में बैठे हुए ईमानदारों के लिए, 23 चक में, 19 में, 53 में, 49 में, 42 में, 45 में, इन सब लोगों के लिए क्या दुआ चल रही है। ये भी हमारा बुलावा है, हम आने वाले कल के दिन में इस पे सीखेंगे कि अगर हम आधी रात को उठ खड़े हों तो हमें अपने किचन में जाके हांडी साफ करने की जरूरत नहीं कि दूध बचा हुआ तो दूध को पी जाएं, या चावल बचे हुए तो भाई हो मेरी बहन ना खा जाए चावल, उस तो पहले मैं तड़के ही हूँ कहते के गेड़ा दे रहा। हम इसलिए आधी रात को उठ खड़े नहीं होते बल्कि इसके पीछे खुदा का मकसद होता है, और वो बेहतरीन मकसद क्या है? दुआ। खुदा आज सुबह जब मैं जाऊं किसी बहन की हौसला अफजाई का वसीला बनूं, खुदावंद अब जब मैं इस सुबह के लिए काम पर जाऊं, किसी के घर पर भी काम करूं, तो खुदावंद मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज निकलें कि जो उनके हकीम, पीर, फकीर, जादूगर नहीं कर सकते, तू मेरे सीधा से काट। अगर आप किसी के घर में भी काम करते हैं, जैसा कि अक्सर होता है, बहनें, भाई, बच्चे, बुजुर्गें जाती हैं काम करने के लिए, खुदा आपको वहां पर भी इस्तेमाल कर सकता है। क्यों? याद होगा आपको गुलाम बच्ची के बारे में, बनी इसराइल कौम की थी, उसे गुलाम करके बाबुल में ले गए। नमान कोड़ी की कहानी सुनी होगी आपने, नमान कोड़ी सुनी है आपने कहानी? हाँ जी, जरा बुलंद आवाज दें ताकि रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज आए। नमान कोड़ी की कहानी सुनी है आपने?
जी
उसमें एक लड़की का जिक्र है, वो गुलाम थी और उसने अपने आका को, उस बादशाह को, उस फौजी सूबेदार को क्या कहा कि अगर तू मेरे खुदा के उस नबी के पास जाए जिसका नाम अलीशा है तो वो तुझे शिफा दे सकता है। हम भी ऐसा कह सकते हैं कि हाँ बाजी, पाजी आपने बहुत से बाबों पीरों फकीरों पर तकात किया है, अपना रुपया पैसा कुर्बानी सब कुछ बहा दिया, लेकिन अगर आप जिंदा खुदा के पास उसके बेटे यीशु पर ईमान रखें तो वो आपको शफा दे सकता है। ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपके ये अल्फाज किसी की जिंदगी बदलने का वसीला बन सकते हैं। इसलिए हर रोज हमें क्या कहने की जरूरत है? खुदावंद मैं हाजिर हूं,
हाजिर
खुदावंद मैं
हाजिर
हाजिर हूं,
हूँ,
खुदावंद मैं
हाजिर
हाजिर हूं,
हूँ,
मुझे इस्तेमाल कर। जैसे सैमुअल नबी को उसने इस्तेमाल किया, जैसे मुकद्दस मरियम को उसने इस्तेमाल किया, जैसे उसने पालूस रसूल को इस्तेमाल किया, वो आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। इस बुलावे में यही बात है, इसमें बहुत कुछ है। खुदा के कलाम में इस आयत में बहुत कुछ है, हम इस पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें से नौजवानों को खुदा ने बुलाया है, आप में से हर एक को खुदा ने बुलाया है अपनी खिदमत के लिए, आप बहनों में से हर एक को खुदा ने बुलाया है अपनी खिदमत के लिए, कि अपने खामत के लिए बरकत का बायस ठहरे, अपने बच्चों के लिए रूहानी दरसगाह ठहरे, अपने पड़ोसियों के लिए निजात का बायस ठहरे। ये अल्फाज बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं इनको और सादा नहीं कर सकता, लेकिन खुदा का पाक रूह आपको समझ दे सकता है इन सारे अल्फाजों की। हो सकता है ये आपकी सोच से बड़े अल्फाज हों, लेकिन खुदा का पाक रूह आपकी जरूरत के मुताबिक आपको वो समझा सकता है। इंसान इस काबिल नहीं है, मैं इस काबिल नहीं, कोई भी ऐसा खादम काबिल नहीं कि जो आपकी जरूरत या आपकी समझ के मुताबिक आपके साथ बयान कर सके कि किस तरह आप समझ सकते हैं, लेकिन खुदा कर सकता है। इसलिए आए हम सब उस खुदा का शुक्र करें, आप में से हर एक को उसने बुलाया है। आज जब यहां पर हैं, अपनी दुआ में उसे पूछे, खुदावंद आज तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं क्या करूं। मेरी सुबह 3 बजे जो दुआ थी वो यही थी, खुदावंद आज मैं जितनों से भी मुलाकात करूं, मेरे बोलने के वसीला से तेरे बेटे यीशु नाम को इज्जत और जलाल मिले। आप सब अपनी अपनी दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद मेरे लिए आज तेरा क्या हुक्म है। आए हम सब दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की हम तेरे नाम की सताइश करते हैं। सबको इजाजत है, आजादी है, आप सब मिलकर दुआ कर सकते हैं बुलंद आवाज से, खामोशी में। खुदा खुदा आज के कलाम के वसीला से, आज की सारी नसीहत और तरबियत और दावत के वसीला से जो तूने खुदा खुदा बख्शी है, हम तेरा शुक्र करते हैं। सुनने वालों को खुदा खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज सारे दिन में हमें अपने गवाहों की तरह, हमें अपने इत्मीनान को, तेरे इत्मीनान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। और